एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे जबरदस्त, मतलब बहुत ही प्रभावशाली विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्हें महागरुण कहा गया।
महान चील।
हाँ, महान चील मूसा बिन मैमून। दुनिया उन्हें रैमबैम या मैमोनाइट्स के नाम से ज्यादा जानती है, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि समझिए कि मध्ययुगीन यहूदी सोच, उनके कानून, यहाँ तक कि मेडिसिन यानी चिकित्सा के शिखर का प्रतीक है ये।
हाँ, और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो शायद ये थी कि उन्होंने एक ऐसे दौर में जब अक्सर ज्ञान और आस्था, या कहें कि तर्क और विश्वास, वो आमने सामने खड़े दिखते थे, उनके बीच एक पुल बनाने का बहुत अहम और मुश्किल काम किया।
अच्छा,
और उनका असर वो सिर्फ यहूदी दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पश्चिमी दर्शन और विचार पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।
तो चलिए इस महागरुण की उड़ान को जरा और करीब से समझते हैं। पूरा नाम तो खैर बहुत लंबा था अरबी में, लेकिन उनका जन्म हुआ 12वीं सदी में, लगभग 1138 के आसपास,
जी,
स्पेन के कॉर्डोबा शहर में, जो उस वक्त अल अंदलूस का हिस्सा था, मतलब इस्लामी तहजीब का एक बहुत बड़ा केंद्र। और बाद में उनका परिवार मिस्र में जाकर बस गया, जहां 1204 में उनका निधन हुआ।
और देखिए, उनका जो समय था वो भी बड़ा दिलचस्प था। वो इस्लामी स्वर्ण युग का दौर था। स्पेन में खासकर क्या हो रहा था कि यूनानी दर्शन, अरस्तु, प्लेटो, इस्लामी विज्ञान और यहूदी परंपराएं, ये सब एक दूसरे से मिल रही थीं, बहसें हो रही थीं, एक बिल्कुल नया संगम बन रहा था। अरस्तु के विचारों का अरबी में अनुवाद हो चुका था और उन पर जोर शोर से चर्चाएं चल रही थीं।
लेकिन ये सिर्फ, मतलब, शांत बौद्धिक चर्चाओं का ही दौर नहीं था। उनके अपनी जिंदगी में एक बड़ी उथल पुथल आई जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, वो अल्मोहाद आक्रमण।
बिल्कुल। हुआ ये कि जब वो किशोरी थे, शायद 13-14 साल के, करीब 1148 के आसपास की बात है ये, उत्तरी अफ्रीका से आए कुछ कट्टरपंथी शासक थे अल्मोहाद।
अच्छा,
उन्होंने कॉर्डोबा पर कब्जा कर लिया और वो इस्लाम की, आप कह सकते हैं, ज्यादा सख्त व्याख्या लागू करना चाहते थे। तो उन्होंने गैर मुसलमानों के सामने तीन रास्ते रखे, या तो इस्लाम अपनाओ, या देश छोड़ दो, या फिर मौत। तो इस धार्मिक कट्टरता की वजह से रैमबैम के परिवार को अपना घर, अपना वतन छोड़ना पड़ा।
तो मतलब उन्हें बचपन में ही एक तरह से शरणार्थी बनना पड़ा। इसका उनकी सोच पर क्या असर पड़ा होगा?
असर तो यकीनन बहुत गहला पड़ा होगा। आप सोचिए, परिवार सालों तक स्पेन और मोरक्को में भटकता रहा। ऐसी भी बातें कि शायद उन्हें अपनी पहचान छिपाकर भी रहना पड़ा हो कुछ समय।
हाँ,
तो ये अनुभव, घर छूटना, एक अनिश्चितता का माहौल, धार्मिक उत्पीड़न, इन सब ने आस्था, पहचान, मजबूरी में क्या करें, विश्वास को कैसे बनाए रखें, ऐसे सवालों पर उनकी सोच को जरूर तराशा होगा। आखिर में जाके वो मिस्र के फुस्टाट, यानी पुराने काहिरा में बसे, जो उस समय तुलनात्मक रूप से ज्यादा सहिष्णु जगह थी।
और मिस्र में ही फिर उन्होंने अपने वो महान काम किए। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, क्या उन्हें सिर्फ पारंपरिक यहूदी शिक्षा ही मिली थी?
नहीं नहीं, यही तो उनकी खासियत है। देखिए, उनके पिता खुद एक रब्बी विद्वान थे, तो जाहिर है उन्हें तोड़ा और तलमूड की गहरी तालीम तो मिली ही, लेकिन साथ ही उन्होंने उस जमाने के जो दूसरे अहम विषय थे, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और खासकर अरस्तु का दर्शन, वो भी पढ़ा।
अच्छा,
ये जो दोहरा ज्ञान था ना, धार्मिक और सेक्युलर जिसे कहते हैं, यही उनके पूरे काम की नींव बना।
मिस्र में उनकी जिंदगी में एक और बड़ा और शायद दुखद मोड़ आया उनके भाई डेविड की वजह से।
हाँ, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। उनके छोटे भाई थे डेविड, वो एक व्यापारी थे और वही परिवार का, खासकर मूसा के अध्ययन का खर्चा उठाते थे।
जी,
वो एक समुद्री यात्रा पर गए और वहीं डूब गए। साथ में परिवार की जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई। इस हादसे ने रामबाम को एकदम तोड़ दिया। बताते हैं कि वो गहरे अवसाद में चले गए थे। और इसी मुश्किल घड़ी के बाद उन्हें परिवार चलाने के लिए चिकित्सा का पेशा अपनाना पड़ा, जिसे उन्होंने पहले शायद एक शौकिया तौर पर ही सीखा था।
और कमाल यह है कि वो इसमें भी शिखर पर पहुंचे, शाही चिकित्सक तक बन गए।
हाँ, उनकी योग्यता तो कमाल की थी। वो पहले वजीर के डॉक्टर बने और फिर सुल्तान सलादीन के परिवार के निजी चिकित्सक। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो मिस्र के यहूदी समुदाय के नागिद, यानी प्रमुख नेता भी चुने गए।
वाह,
तो आप सोचिए, एक ही व्यक्ति इतना बड़ा डॉक्टर भी है, दार्शनिक भी है और अपने समुदाय का नेता भी। ये उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा थी उसको दिखाता है।
चलिए अब उनके लेखन और उनके विचारों पर आते हैं। उनके तीन बड़े काम माने जाते हैं। पहला है मिशना पर टिप्पणी। इसमें क्या खास था?
हाँ, तो देखिए, मिशना जो है वो यहूदी मौखिक कानून का पहला संकलन है। रैम्बैम ने उस पर एक बहुत विस्तृत टीका लिखी अरबी जबान में, ताकि आम लोग भी उसे आसानी से समझ सके।
अच्छा।
और इसी किताब में उन्होंने अपने वो मशहूर विश्वास के 13 सिद्धांत दिए। ये एक तरह से यहूदी आस्था के जो मूल तत्व हैं उनका निचोड़ था, जैसे ईश्वर एक है, वो अशरीरी है, मूसा सबसे बड़े पैगंबर हैं, वगैरह वगैरह। और ये सिद्धांत आज भी यहूदी धर्म में बहुत अहमियत रखते हैं।
उस दौर में इस तरह से आस्था को सूत्रों में बांधना, क्या ये अपने आप में एक नई बात थी?
हाँ, कह सकते हैं कि ये काफी क्रांतिकारी कदम था। जो बिखरे हुए विश्वास थे या अलग अलग तरह से समझे जाते थे, उनको इतने स्पष्ट और तार्किक ढंग से पेश करना, जैसे वो कोई घोषणा पत्र तैयार कर रहे हो कि भाई यहूदी होने का बुनियादी मतलब क्या है, ये दिखाता है कि वो चीजों को व्यवस्थित करना चाहते थे, उनमें एक स्पष्टता लाना चाहते थे।
उनका दूसरा बड़ा काम है मिशने तुरा, ये क्या है?
अरे, ये तो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी काम था। हिब्रू में लिखा गया पूरे 14 खंडों का एक विशाल ग्रंथ।
14 खंड?
जी हाँ। इसमें उन्होंने क्या किया कि बाइबल और तलमूद में जो हजारों यहूदी कानून बिखरे पड़े थे, उनको विषय के हिसाब से तरतीब दे दी, व्यवस्थित कर दिया।
मतलब एक तरह का कोडिफिकेशन।
बिल्कुल, एक तरह का लीगल कोड। आप सोचिए, सदियों की कानूनी बहसें, अलग अलग रायें, उन सबको एक सिस्टमैटिक ढांचे में ढालना। उनका मकसद ये था कि एक आम आदमी भी, जिसे तलमूद की पेचीदा बहसों में जाने का वक्त या योग्यता ना हो, वो भी आसानी से जान सके कि कानून क्या कहता है। ये यहूदी कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। आज भी इसका बहुत अध्ययन होता है।
कानून को सुलभ बनाना, उसे तर्कसंगत बनाना, ये उनके तर्कवादी नजरिए को दिखाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मशहूर दार्शनिक काम, द गाइड फॉर द पर्प्लेक्स्ड, यानी उलझन में पड़े लोगों के लिए मार्गदर्शक। ये किन की उलझने दूर करने के लिए था?
हाँ, तो ये किताब उन पढ़े लिखे यहूदियों के लिए थी जो अरस्तु के दर्शन से बहुत प्रभावित थे।
अच्छा।
और इस वजह से उनके मन में एक उलझन पैदा हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं और ये जो तर्कवादी यूनानी सोच है, इनमें तालमेल कैसे बिठाएं?
जैसे कि कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए, बाइबल में लिखा है ईश्वर का हाथ। अब दर्शन कहता है कि ईश्वर तो अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं होता, तो फिर ईश्वर का हाथ का क्या मतलब हुआ?
हाँ, ये तो कन्फ्यूजन है।
बिल्कुल। तो रैम्बैम ने इस किताब में यही समझाया कि देखो, सच्चा विश्वास और सही तर्क, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये दोस्त हो सकते हैं और होने चाहिए।
ये तो आज भी बहुत बड़ा सवाल है, आस्था और तर्क का रिश्ता। रैम्बैम ने इसे सुलझाया कैसे? क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि देखिए, कई बार हमें धर्म ग्रंथों को उनके शाब्दिक अर्थों में नहीं लेना चाहिए। वो अक्सर गहरे आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य बताने के लिए रूपकों का, मेटाफोर्स का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा।
ईश्वर के बारे में हमारी जो भाषा है वो बहुत सीमित है। यहीं पर उनका वो नकारात्मक धर्मशास्त्र यानी नेगेटिव थियोलॉजी का विचार आता है।
नकारात्मक धर्मशास्त्र, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है।
हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा विचार है। रैम्बैम कहते हैं कि हम ये कभी पूरी तरह से जान ही नहीं सकते कि ईश्वर क्या है। क्यों? क्योंकि वो हमारी समझ और हमारी भाषा से परे है। हम सिर्फ ये जान सकते हैं या कहने की कोशिश कर सकते हैं कि ईश्वर क्या नहीं है। जैसे ईश्वर शरीर नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो बटा हुआ नहीं है।
ओके।
जब हम ईश्वर पर दयालु या शक्तिशाली जैसे इंसानी गुण लगाते हैं ना, तो असल में हम उसे अपनी समझ के दायरे में सीमित कर देते हैं। सच्ची समझ इस बात को स्वीकार करने में है कि ईश्वर परम अद्वितीय है, यूनिक है और हमारी बुद्धि से परे है।
तो मतलब ईश्वर के बारे में कुछ कहने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि वो क्या नहीं है। ये तो ईश्वर को बहुत रहस्यमयी और शायद थोड़ा दूर का नहीं बना देता?
एक तरह से हाँ, लेकिन रैम्बैम के लिए ये ईश्वर की महानता और मनुष्य की सीमाओं को स्वीकार करना था। उनके लिए सबसे ऊंची बौद्धिक उपलब्धि ईश्वर की इसी एकता और अद्वितीयता को समझना था। और उनका ये भी मानना था कि जो तोराह के नियम है यानी धार्मिक आज्ञाएं, वो भी कोई मनमाने हुक्म नहीं है।
अच्छा।
हाँ, उनके पीछे भी तर्कसंगत उद्देश्य है, इंसान की शारीरिक, नैतिक और सामाजिक भलाई के लिए। इसीलिए उनके लिए ज्ञान की खोज, दर्शन का अध्ययन, ये भी ईश्वर की उपासना का ही एक रूप था, बल्कि शायद सबसे ऊंचा रूप।
उन्होंने नैतिकता के बारे में भी बात की और कहा जाता है कि वो अरस्तु से प्रभावित है। वो स्वर्ण मध्य का सिद्धांत क्या है?
हाँ बिल्कुल, अरस्तु की तरह वो भी मानते थे कि जो नैतिक सद्गुण हैं, यानी अच्छी आदतें या गुण, वो असल में दो अतिवादी बुराइयों के बीच का एक संतुलन है, एक मिडिल पाथ है।
जैसे?
जैसे साहस, करेज। वो एक तरफ उतावलेपन, मतलब बिना सोचे समझे खतरे में कूद जाना, और दूसरी तरफ कायरता, यानी डर के मारे कुछ न करना। इन दोनों के बीच का रास्ता है।
सही।
इसी तरह उदारता है, वो फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच का गुण है। तो हमें हमेशा संतुलन साधना चाहिए, किसी एक किनारे पर नहीं चले जाना चाहिए।
इन विचारों का जाहिर है यहूदी दुनिया पर तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा, लेकिन क्या इसका असर बाहर भी महसूस किया गया? आपने शुरू में थॉमस एक्विनास का जिक्र किया था।
बिल्कुल, गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड का जब लैटिन में अनुवाद हुआ तो उसने ईसाई दार्शनिकों और खासकर थॉमस एक्विनास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक्विनास भी तो उसी कोशिश में लगे थे ईसाई धर्म और अरस्तु के तर्क में तालमेल बिठाना, हालांकि दोनों में फर्क भी थे, जैसे ईश्वर के ज्ञान को लेकर।
क्या फर्क था?
एक्विनास मानते थे कि हम ईश्वर के बारे में कुछ सकारात्मक बातें जान सकते हैं, कि वो क्या है, जबकि रैम्बैम का जोर नकारात्मक धर्मशास्त्र पर था कि हम क्या नहीं जान सकते। पर मुद्दा यह है कि दोनों ही ये मान रहे थे कि आस्था और तर्क साथ साथ चल सकते हैं।
लेकिन क्या सभी लोगों ने, खासतौर पर यहूदी समुदाय के अंदर, उनके नए और तर्कवादी विचारों को आसानी से मान लिया?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मृत्यु के बाद तो बाकायदा एक बड़ा विवाद छिड़ गया, जिसे मैमोनेडियन विवाद कहते हैं।
अच्छा।
हाँ, ये उनके जो तर्कवादी समर्थक थे और जो ज्यादा परंपरावादी लोग थे, उनके बीच एक तीखी लड़ाई थी। परंपरावादियों को डर था कि ये जो यूनानी दर्शन पर इतना जोर दिया जा रहा है
और धर्म ग्रंथों की रूपक व्याख्या की जा रही है, इससे कहीं यहूदी आस्था कमजोर न पड़ जाए, उन्हें लगा कि रैम्बैम मानवीय तर्क को ईश्वरीय रहस्योद्घाटन यानी डिवाइन रिविलेशन से ऊपर रख रहे हैं।
ये विवाद कितना बढ़ गया था?
काफी ज्यादा बढ़ गया था। हालत ये हो गई कि 13वीं सदी में फ्रांस में कुछ कट्टरपंथियों ने चर्च के अधिकारियों की मदद से रैम्बैम की जो दार्शनिक किताबें थी उन्हें सरेआम जलवा दिया।
क्या कह रहे? चर्च ने जलवाया?
हाँ, दूसरे यहूदियों के कहने पर। आप सोचिए, ये दिखाता है कि उनके विचार उस वक्त कितने विस्फोटक, कितने रेडिकल माने गए थे।
ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है।
हाँ।
फिर भी आज हम उन्हें इतना महान मानते हैं, तो क्या अंत में उनके विचार ही जीते? कह सकते हैं कि समय के साथ उनका कद बढ़ता ही गया। विवाद तो हुए, लेकिन उनकी विद्वत्ता, उनके कानूनी काम की जो स्पष्टता थी और उनके दार्शनिक विचारों की जो गहराई थी, उसको नकारा नहीं जा सका। वो एक मशहूर कहावत है ना हिब्रू में, जिसका मतलब है मूसा जो पैगंबर थे से लेकर मूसा यानी मैमोनिडीज तक, मूसा जैसा कोई नहीं हुआ।
वाह।
तो मिशने तोरा यहूदी कानून का आधार बना रहा और गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड सिर्फ यहूदी दर्शन ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी विचार के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया।
आज के जमाने में उनकी क्या प्रासंगिकता है? क्या 21वीं सदी में भी रैम्बैम से कुछ सीखा जा सकता है?
मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देखिए, आज भी जब विज्ञान और धर्म के बीच बहस होती है,
हाँ होती है,
तो उनका जो एक संतुलित नजरिया था कि भाई दोनों सच हो सकते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो आज भी बहुत काम का है। उनका तर्क पर जोर देना, बौद्धिक ईमानदारी की मांग करना, ये चीजें तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी।
सही।
यहाँ तक कि आजकल जो बायोएथिक्स यानी चिकित्सा नैतिकता जैसे नए क्षेत्र हैं, उनमें भी स्वास्थ्य सेवा और नैतिक फैसलों पर उनके विचारों से प्रेरणा ली जाती है।
उनके कुछ कथन हैं जो उनकी सोच की अच्छी झलक देते हों?
हाँ, कई हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, अपनी जबान को मुझे नहीं पता कहना सिखाओ और तुम तरक्की करोगे।
वाह, कितनी विनम्रता है इसमें।
बिल्कुल, ये उनकी बौद्धिक विनम्रता है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, अपनी सीमाओं को पहचानना। या फिर दान के बारे में उनका कहना कि सबसे अच्छा दान वो है जो किसी को आत्मनिर्भर बना दे।
अच्छा।
हाँ, मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं बल्कि उससे कोई हुनर सिखा दो या कोई काम शुरू करने में मदद कर दो, ताकि उसे दोबारा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये उस व्यक्ति का सम्मान भी बनाए रखना है।
ये आत्मनिर्भरता वाली बात तो उस मशहूर कहावत से भी जुड़ती है जो अक्सर उनसे जुड़ी जाती है, किसी को मछली दो तो एक दिन पेट भरेगा, मछली पकड़ना सिखा दो तो जिंदगी भर पेट भरेगा। हालांकि ये शायद मूल रूप से उनकी ना हो, पर उनकी सोच से मेल खाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये शिक्षा और सशक्तिकरण पर उनके जोर को दिखाता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात उनके जीवन से जुड़ी है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी व्यस्त थी।
हाँ, वो डॉक्टर भी तो थे।
हाँ, उन्होंने एक खत में लिखा है कि शाही डॉक्टर होने के नाते वो पूरा दिन महल में बिताते थे, और जब रात को थक कर घर लौटते तो बाहर यहूदी और गैर यहूदी दोनों तरह के मरीजों की भीड़ उनका इंतजार कर रही होती थी।
ओ।
और वो बिना कुछ खाए पिए घंटों उनका इलाज करते रहते थे, और अक्सर थकान से बेहाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ते थे। ये उनके समर्पण को दिखाता है।
कमाल है। अच्छा, क्या आज भी उनकी किसी तरह की आलोचना होती है, या आप सब उन्हें निर्विवाद रूप से महान मानते हैं?
नहीं, देखिए, बहसें तो आज भी जारी हैं। कुछ ज्यादा रूढ़िवादी यहूदी विचारक मानते हैं कि उन्होंने शायद यहूदी धर्म के जो रहस्यमय या अलौकिक पहलू हैं उनको थोड़ा कम करके आंका।
अच्छा,
आधुनिक विद्वान इस पे भी बहस करते हैं कि क्या अरस्तु का दर्शन पूरी तरह से यहूदी एकेश्वरवाद के साथ मेल खाता है या नहीं। कुछ नारीवादी विद्वान महिलाओं की धार्मिक भूमिकाओं पर उनके जो मध्ययुगीन विचार थे उनकी आलोचना करते हैं। और ये सवाल तो हमेशा ही रहता है कि वो मूल रूप से एक धार्मिक विचारक थे या एक दार्शनिक थे जिसके लिए धर्म एक विषय था। शायद यही उनकी महानता है कि वो इतने जटिल और बहुआयामी है कि आज भी उनपे इतनी तरह से बात हो सकती है, बहस हो सकती है। देखिए, माइमोनिडेस सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक कोशिश के प्रतीक। इस कोशिश के कि ज्ञान की प्यास और आस्था की गहराई ये एक साथ रह सकती है।
हाँ।
कि दिमाग और दिल, इनमें कोई ज़रूरी दुश्मनी नहीं है, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए तो पूरी ईमानदारी से तर्क करना, सवाल पूछना, चीज़ों को समझना, यही ईश्वर पर विश्वास की सबसे ऊंची सीढ़ी थी।
और ये बात हमारे लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। हम आज के दौर में जहाँ हर तरफ इतनी जानकारी है, इतने अलग अलग विचार हैं, विज्ञान है, आस्था है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, और अक्सर इनके बीच एक तनाव सा दिखता है, तो हम माइमोनाइट्स की तरह इन अलग अलग सत्यों या दृष्टिकोणों के बीच पुल कैसे बना सकते हैं? हम अपने समय की जो उलझने हैं उन्हें सुलझाने के लिए अलग अलग नजरियों को कैसे जोड़ सकते हैं? शायद इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।